ऋग्वेद प्रथम मंडल 24वां सूक्त और 8वां मंत्र। उरुम ही राजा वरुणश्चकार सूर्याय पंथामन वेतवा उ अपदे पादा प्रतिगधातवे करुतापवक्ता हृदया विधश्चित। पदार्थ चित्त, जैसे अपवक्ता मिथ्यावादी छली दुष्ट स्वभाव युक्त पराये पदार्थ, हृदया विदह अन्याय से पर पीड़ा करने हारे शत्रु को दृढ़ बंधनों से वश में रखते हैं, वैसे जो वरुण राजा अतिश्रेष्ठ और प्रकाशमान परमेश्वर वा श्रेष्ठता और प्रकाश का हेतु वायु सूर्याय सूर्य के अन्वेत वही गमनागमन के लिए उरुम विस्तार युक्त पंथाम मार्ग को चकार सिद्ध करते उत और अपदे, जिसके कुछ भी चाक्षुष चिन्ह नहीं है, उस अंतरिक्ष में प्रतिधातवे धारण करने के लिए सूर्य के पादा, जिनसे जाना आना बने उन गमन और आगमन गुणों को अकह सिद्ध करते हैं। उ और जो परमात्मा सबका धर्ता ही और वायु इस काम के सिद्ध कराने का हेतु है, उसकी सब मनुष्य उपासना और प्राण का उपयोग क्यों न करें। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार हैं। जिस परमेश्वर ने निश्चय के साथ जिस सबसे बड़े सूर्य लोक के लिए बड़ी सी कक्षा अर्थात उसके घूमने का मार्ग बनाया है, जो इसको वायु रूपी ईंधन से प्रदीप्त करता और जो सब लोक अंतरिक्ष में अपनी अपनी परिधि युक्त हैं, कि जिस किसी लोक का किसी लोकांतर के साथ संग नहीं है, किंतु सब अंतरिक्ष में ठहरे हुए अपनी अपनी परिधि पर चारों ओर घूमा करते हैं, और जो आपस में जिस ईश्वर और वायु के आकर्षण और धारण शक्ति से अपनी अपनी परिधि को छोड़कर इधर उधर चलने को समर्थ नहीं हो सकते, तथा जिस परमेश्वर और वायु के बिना अन्य कोई भी इनका धारण करने वाला नहीं है, जैसे परमेश्वर मिथ्यावादी अधर्म करने वाले से पृथक है, वैसे प्राण भी हृदय के विदीर्ण करने वाले रोग से अलग है, उसकी उपासना व कार्यों में योजना सब मनुष्य क्यों ना करें। इस मंत्र में भौतिक वायु और परमेश्वर के गुणों की समतुलना की गई है। मुख्य रूप से ये एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया जा रहा है कि जैसे सूर्य लोक है, जिसको आप सोलर सिस्टम के रूप में जानते हैं, ये सोलर सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि जितने भी इसमें ग्रह होते हैं सूर्य के चारों ओर, वो अपनी अपनी कक्षा या ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से वैज्ञानिक ये भी जानते हैं, मानते हैं कि जो सूर्य है वह भी अपने से बड़े किसी तारे की परिक्रमा करता है, और ये समस्त जो तारे हैं वे किसी न किसी की परिक्रमा करते हैं, यानी हर किसी के बाप का भी एक बाप इस अंतरिक्ष में मौजूद है। उदाहरण के लिए चंद्रमा पृथ्वी की, पृथ्वी सूर्य की, सूर्य अपने से बड़े किसी तारे की, वो तारा अपने से किसी बड़े तारे की, इस प्रकार से ये सभी परिक्रमा में पूरा अंतरिक्ष चल रहा है। सारी आकाश गंगाएं परिक्रमा कर रही हैं, लेकिन ये सब करते हुए भी आपस में कोई टकराता नहीं है। उन सब की एक बड़ी निश्चित व्यवस्था की हुई है, और इस मंत्र में बताया जा रहा है कि वह वायु के कारण संभव हो पाता है, कि वायु का संचलन इस प्रकार से है कि कोई किसी से टकरा नहीं पाता। हम ये बोलते हैं कि बाहर अंतरिक्ष, हमारे वायुमंडल से बाहर वायु नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है, वायु है, परंतु वो वायु हमारे वायुमंडल से अलग है। हमारे जीवन को जिस प्रकार का एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, जिस प्रकार का वायु चाहिए, वो यहाँ पर उपलब्ध है, और अंतरिक्ष में जिस प्रकार का सूक्ष्म वायु चाहिए, उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जो जिस प्रकार का वो चाहिए उसका वातावरण, वैसा वहाँ पर है। तो इस प्रकार से ईश्वर ने इतने जबरदस्त तरीके से बांधा हुआ है, और ये एक तरह से हमें इशारा करता है कि जो परमात्मा की व्यवस्था है वह कितनी न्यायपूर्ण है और कितनी सटीक है। कोई मनुष्य है या कोई मशीन है, वो लाखों करोड़ों बार में भी एक गलती कर देते हैं, परंतु जो अनंत काल से, अंतरिक्ष कब से है हमारे ऋषि मुनि तो जानते हैं, परंतु हम जैसे जो आज के युग के लोग हैं उनके लिए तो ये मतलब कल्पना से परे है कि कितने समय से ये सारे आकाश गंगाएं, सारे ग्रह आदि, सोलर सिस्टम सारे के सारे किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो उसको अगर हम सोचें तो हमें लगता है कि मतलब देखो, इतने वर्षों से भी इनमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि देखने में नहीं आती, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कोई घटना होती है तो वह अंतरिक्ष में उपलब्ध होती है, जिसको हमारे वैज्ञानिक लोग देखते ही रहते हैं, कुछ ऐसे भी लोग इस धरती पे लगे हुए हैं जो कि अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, क्या हुआ था, वो सब चीज़ें देखते रहते हैं, उनका यही काम है। उसके बावजूद भी उनको कोई त्रुटि नहीं मिलती कि इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था बनी हुई है। आप अंतरिक्ष को छोड़िए, आप धरती पर ही देखिए कि किस प्रकार से जो प्राकृतिक संपदाओं का संयोजन परमात्मा ने कितनी सुंदरता के साथ किया हुआ है। जीवों का विभाग, जीवनों की योनियाँ, किस प्रकार से किस किस योनियों में जीवात्मा जन्म लेता है, उन सब का आपस में एक संयुक्त करने का, एक दूसरे के साथ जो उनका तालमेल है वो किस प्रकार से कितना ज़बरदस्त सिस्टम बनाया है कि कोई कन्फ्लिक्शन नहीं होता। उदाहरण के लिए, मनुष्य जहाँ रहता है कुत्ता भी वहीं रहता है, और कुत्ता जो है वो इस प्रकार से भगवान ने डिज़ाइन किया कि मनुष्य के जितना भी कोई असेट या संपत्ति है उसकी वो चौकीदारी करे। मुख्यतः मकान हो गया तो वो पालतू बना दिया। तो इस प्रकार की कई चीज़ें हम देख सकते हैं। उसको दूध देने के लिए गाय दी, भैंस दी, बकरी आदि दिए, पशु दिए, किस प्रकार से मनुष्य को बुद्धि दी, ये सब जो सिस्टम बना हुआ है ये एक तरह से हमें बताता है कि ये सारा सिस्टम किसी एक बहुत ज़बरदस्त इंटेलिजेंस वाली किसी एंटाइटी ने बनाया, और उसी एंटाइटी को, उस महाशक्ति को, उस आत्मा को, परम आत्मा को हम परमात्मा परमेश्वर कहते हैं। और इस प्रकार से जैसे वे नियमों से सभी को चलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जितने मनुष्य जैसा कर्म करते हैं उनको ठीक वैसा ही वो फल भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति गलत काम करेगा तो उसे अच्छा फल मिलेगा और अच्छे काम करने वाले को बुरा फल मिलेगा। वो कब मिलेगा, उसकी समय अवधि क्या होगी, ये सभी परमेश्वर डिसाइड करते हैं, परंतु इतना पक्का है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा ही। और जो जिस प्रकार से अपनी लाइफ को जिएगा वैसा वो अपने जीवन में फल पाएगा। तो इन सब चीज़ों को हम समझते हैं तो हम जानते हैं कि परमपिता परमेश्वर की सृष्टि में कहीं पर भी अन्याय नहीं होता। ओ